तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीर्थ शब्द याद करके कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता होती है कि प्राचीन काल में जब तीर्थ अपने वास्तविक तीर्थ रूप में रहे होंगे तो कितना आनंद आता होगा। वहाँ जाने के बाद में लोग अपने कलश और कषायों को धोकर के पुनीत पवित्र होकर कैसे निकलते होंगे। गंगा के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, जिसमें पानी में नहाने के बाद में आप पुनीत और पवित्र हो जाते हैं कि नहीं। पर एक और ज्ञान गंगा की बाबत मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, जिन्हें कहते थे उस ज्ञान गंगा में अगर आपको वास्तविक मौका मिल जाए और कहीं आपको किसी वास्तविक तीर्थ में रहने का मौका मिल जाए तो आप यकीन रखिए आप अपने आप को धो करके तो जाएंगे, भविष्य में अपना कपड़ा धुला हुआ रहेगा। क्यों? इसलिए आपने वहाँ रह करके उपासना की है, साधना की है, और उपासना साधना करने के साथ साथ में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वहाँ के वातावरण का लाभ उठाया है। वहाँ जो ऋषि होते हैं उनसे परामर्श करके आप रास्ता भी तलाश करते हैं, और उस रास्ता तलाश करने में एक रास्ता ये भी है कि आपने जो गलतियाँ की हैं उनका प्रायश्चित कैसे हो, भरपाई कैसे हो, आप उसके लिए उदार सहयोग क्या करेंगे, आप उसके लिए जनसेवा के लिए क्या कदम उठाएंगे। इसके लिए आप अपने गुणकर्म और स्वभाव में शालीनता का समावेश करने के लिए ऐसी गतिविधियाँ क्या अपनाएंगे जो आपके संस्कारों के रूप में परिणत बन सके। जब से संस्कार नहीं बनते, रामायण पाठ से संस्कार थोड़े बन जाएंगे, कोई पूजा नहीं, पूजा के साथ साथ में आपको कुछ कुछ न कुछ कृत्य भी करने पड़ेंगे। विचार और कृत्यों का दोनों का समावेश करने के बाद ही ये संभव है कि एक समग्र प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। वास्तव में अध्यात्म का मतलब संस्कार पैदा करना है, और संस्कार ज्ञान और कर्म दोनों के समन्वय से ही होते हैं। ज्ञान में पूजा आती है, पाठ आता है, रामायण पाठ आती है, सत्संग आता है, स्वाध्याय आता है, ये ज्ञान पक्ष है। और कर्म पक्ष उसे कहते हैं, इसमें सेवा का समावेश होता है, परोपकार का समावेश होता है, पुण्य कर्मों का समावेश होता है, जनकल्याण का समावेश होता है। इन दोनों बातों को अगर आप मिला देंगे तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बिजली के दो तार मिल जाने से करंट चालू हो जाता है। आप ज्ञान और कर्म का समावेश अगर कर पाए तो आपका पूर्ण उपासना हो जाएगी और आप उस अध्यात्म के चमत्कार देख पाएंगे। इसलिए आपको तीर्थों का महत्व बताते हुए प्राचीन काल की तरीके से यह बताया था, अगर कहीं तीर्थ आपको मिल जाए और आपको तीर्थ में रहने का मौका सौभाग्य मिल जाए तो आप वहाँ वही प्रक्रिया को ग्रहण करना जो करनी चाहिए। आपको यहाँ रह करके अगर आप इसको गायत्री तीर्थ मानते हैं तो अपना जो समय है इसको एक सुव्यवस्थित रूप से व्यय कीजिए। यहाँ एक सुव्यवस्थित रूप से व्यय करने का क्रम बैठा हुआ है। सवेरे से उठने से लेकर के सायंकाल को सोने तक का एक टाइम टेबल बना हुआ है। ये पूरे का पूरा टाइम टेबल इस बात पर निर्भर रहता है कि आपकी गतिविधियाँ क्या होनी चाहिए, आपको अनुशासित कैसे होना चाहिए, आपको संयमी कैसे रहना चाहिए, आपको तपस्वी की तरह जीवन यापन कैसे करना चाहिए। ये जीवन यापन करने की पद्धति, दिनचर्या का प्राविधान ऐसा है, इसको आप ग्रहण कर लेते हैं तो अभी आपको अपने आप को प्रशिक्षित करने में बहुत कुछ सफल होते हैं। यहाँ का एक वातावरण भी है, सैनिटोरियमों का एक वातावरण भी होता है। इलाज तो कहीं भी कराए जा सकते हैं, पर सैनिटोरियम जिसमें डॉक्टर भी रहते हैं, वातावरण भी वैसा है, क्लाइमेट भी वैसा है, वहाँ रहने से आदमी जल्दी अच्छे हो जाते हैं। सैनिटोरियम में रह करके जो फ़ायदा उठाया जा सकता है वही प्राचीन काल के बच्चे गुरुकुलों में रह के उठाते थे। बड़ी उम्र के आदमी आरण्यकों में रहते थे। आरण्यक बड़े आदमियों के लिए सेवा साधना के विद्यालय को कहते हैं। बुद्ध ने बहुत सारे संघाराम बनाए थे, बिहार बनाए थे, उसमें लोक सेवा के लिए इच्छुक लोगों की शिक्षाओं का निवास करने का प्रबंध था। ये आरण्यक कहलाते थे। इनको बुद्ध विहार कहिए, आप आरण्यक कह लीजिए, नाम शब्दों से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे स्थान जहाँ कहीं भी हो वहाँ आदमी को अपनी आत्म साधना करनी पड़ती। तीर्थ ये थोड़ी है यहाँ का, यहाँ खिलौना देखा एक पैसा फेंका, यहाँ खिलौना देखा एक पैसा फेंका, बस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, धक्के खाते फिरे और जहाँ तहाँ जेब कटाते फिरे। इस बहाने साहब यहाँ दान कीजिए या फलाना कीजिए, ये तो भाई साहब अज्ञानियों का जंजाल है। आप इस अज्ञानियों के जंजाल से दूर रह करके तीर्थयात्रा की गहराई तक जाने का कोशिश कीजिए। तीर्थयात्रा की गहराई ये है कि कि आप उतने समय जितने समय की तीर्थ सेवन करें उतने समय में अपने आप को परिशोधन के लिए कोशिश करें, भूतकाल के गड्ढे भरने की कोशिश करें और भावी योजनाओं को बनाने की कोशिश करें। भविष्य में हम क्या बनेंगे इसके लिए आज के वर्तमान में हमको तपश्चर्या करनी चाहिए। आज के वर्तमान की तपश्चर्या का मतलब है भावी जीवन के लिए नीति निर्धारण करने का संकल्प। ऐसे करेंगे तो आपका तीर्थ सेवन सशक्त हो जाएगा। आप यहाँ आए हैं तो आप ये मन के चलिए यहाँ कल्प साधना शिविर में बुढ़े को जवान बनने के लिए नहीं बल्कि अपना अंतरंग परिष्कार करने के लिए आए हैं। इसलिए जितना भी समय है आप इसको स्वाध्याय में लगाइए, आप चिंतन में लगाइए, चिंतन में लगाइए, मनन में लगाइए, पूजा में लगाइए, उपासना में लगाइए और अच्छे लोगों के संपर्क में लगाइए, अच्छे वातावरण में रहने में लगाइए, गंगा के किनारे पर जाके रहिए। पूरे का पूरा समय आपका ऐसा हो इसमें कहीं अवांछनीयता के लिए गुंजाइश न हो, आपका चिंतन ऐसा हो इसमें अवांछनीयता के लिए कोई गुंजाइश न हो। ऐसे हैं ये तीर्थ हमने बनाए। मानधाता की सहायता से जगत गुरु शंकराचार्य ने चार धाम बनाए थे, चार तीर्थ बनाए थे। वो शानदार तीर्थ बनाने के इच्छुक थे इसीलिए उन्होंने शानदार ही बना डाले। भगवान बुद्ध ने बहुत सारे तीर्थ बनाए थे। कहाँ बनाए थे? सारे भारतवर्ष में बुद्धों के विहार, बुद्धों के विहार, संगाराम बुद्धों के विहार, उन विहारों में शिक्षण शिक्षण साधना शिक्षण ये भरा रहता था। बुद्ध विहार थे, तीर्थ कहेंगे बिल्कुल न कहूँगा तीर्थ। भगवान महावीर ने भी ऐसे किया था, उन्होंने समर्थगुरु रामदास ने भी ये किया था। समर्थगुरु रामदास ने महाराष्ट्र के हर गाँव में दौरा किया था और वहाँ की उस समय की परिस्थिति के अनुसार से हनुमान जी के मंदिर बना दिए थे, महावीर मंदिर। पैसे का प्रबंध कहाँ हो सकता था? विचारशील बातों में कोई आदमी कहाँ पैसा खर्च करता है? ठगी आप लोग जेबें काट ली, बेवकूफों की कमी है क्या? कहीं कमी नहीं है। मालदार उससे भी ज़्यादा बेवकूफ होते हैं। गरीबों को चाहें तो आप गरीबों को बहका दीजिए, मालदार को बहकाने के तरीके अलग हैं। उन तरीकों को आप इख्तियार कर लीजिए। मालदारों को खूब बहकते हैं, मालदार कोई कम बहकते हैं क्या? गरीबों की जेब कटती है वो उनकी जेब कटती है, और मालदारों को उल्लू बनाया जाता है, मालदार और भी ज़्यादा उल्लू बनते हैं। इसीलिए मैं उसकी बात नहीं कहता। किसकी बात? कि बड़े शानदार मंदिर बनाना ज़रूरी है क्या या बना सकते हैं क्या? समर्थगुरु रामदास ने महावीर मंदिर बनाए। कैसे बनाए? मिट्टी की दीवारों के बने हुए, फूस के झोंपड़ों के बने हुए। हनुमान जी की मूर्तियाँ उन्होंने गाँव में पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों से स्थानीय कारीगरों के माध्यम से जैसे तैसे बना लिए, कहीं उल्टे कहीं पुलटे। उसमें क्या किया, उनको लिबास कहाँ से आए, पोशाक कहाँ से आए, श्रृंगार कहाँ से आए, उन्होंने सिंदूर से उनको लपेट दिया और सिंदूर से इन पत्थरों को लपेट देने के बाद में हनुमान जी की मूर्ति बना दी, बालाजी की मूर्ति बना दी। बस मूर्तियाँ बन के तैयार हो गए। तब फिर क्या हुआ उनका? वहाँ लोग पूजा तो करते थे पर पूजा ही नहीं करते थे। आज की खराबी ये है कि आज हमारे मंदिरों में केवल पूजा ही होती है। होना ये चाहिए कि पूजा भी हो, बाकी समय में कुछ और भी हो। समर्थगुरु रामदास ने जगह जगह इस तरह का प्रबंध किया कि उन्होंने हर महावीर मंदिर के साथ में एक व्यायामशाला अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रखी। स्वास्थ्य संवर्धन, साहस का संवर्धन, स्वास्थ्य का संवर्धन, संतुलन का संवर्धन और अनुशासन का परिपालन, इसके लिए उन्होंने हर जगह से व्यायामशाला बनाई। व्यायामशाला एक तरह की विद्यालय है, इसमें कि ये बातें सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद में हर महावीर मंदिर के साथ साथ में एक पाठशाला, इसमें गांव के बच्चे, बड़े आदमी, छोटे आदमी, औरतें, जो कोई भी जिनको विद्या का शौक था वो जाएं और वहां के पुजारी से विद्या प्राप्त करें। स्वास्थ्य संरक्षण, विद्याध्ययन और इसके अलावा रात्रि को कथाएँ थीं। कथाओं का अर्थ है प्राचीन काल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों को सुना करके आज की समस्या का समाधान। कथा का मतलब ये नहीं है कि आप इधर की गब्बाजी, श्री कृष्ण भगवान ने 16,000 108 रानियों से शादी कर ली, एक एक के 8-8 बच्चे पैदा कर लिया। बेकार की बातें, बेसिलसिले की बातें, इनका कुछ मानी है न कोई मतलब है, न जिन शिक्षाओं का आज कोई उपयोगिता है, न प्राचीन काल में उपयोगिता थी। आप कथाएँ नहीं कहते हैं, शंकर जी ने श्री गणेश जी का सरकार डाला और हाथी का चिपका दिया, फिर क्या मतलब है? बेकार की बातें। हम पुराण पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, न ये पुराण है, न ये सत्संग है, न ये कथा है। कथा के पीछे उद्देश्य होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। प्राचीन काल में समर्थगुरु रामदास ने दास बोध की कथाएं दास बोध इसीलिए बनाया था। प्राचीन काल में क्या क्या सुनाया जाता था, उसमें इतना कूड़ा करकट, इतना जाल जंजाल भर गया है कि इनको सुनाना मुश्किल पड़ गया। इसलिए दास बोध की कथाएं हर महावीर मंदिर में रात को होती थी। उन्होंने उनको एक न्यायी शास्त्र बनाना पड़ा, न्यायी पुराण बनाना पड़ा, न्यायी वेद बनाना पड़ा। क्या करते बेचारे उस कूड़े कचरे में से क्या चीज़ पल्ले पड़ती। आज आपको इस कूड़े कचरे में से क्या चीज़ पल्ले पड़ने वाली है, कुछ भी तो नहीं है सिवाय आफत पैदा करने के और दिमाग ख़राब करने के और पुरानी गब्बाजियाँ खड़ी खड़ी करने के, अपना समय दूसरों का समय ख़राब कराने के अतिरिक्त और क्या है कथा। इसलिए कथा भी उन्होंने बनाई तो सही, कथा की परंपरा को जिंदा तो रखा तो सही, ऐसी शानदार ढंग से कथा बनाई कि मज़ा आ गया। शिवाजी की सारी सेना को समर्थन वहीं से मिला, हथियार वहीं से मिले, अनाज वहीं से मिला और आज़ादी की लड़ाई उन महावीर मंदिरों से भी लड़ी गई। आपको इसी तरीके से पुनरावृत्ति आज हुई है। हमने दो धाम पहले बनाए थे, मथुरा का धाम बनाया और एक यहाँ का बनाया, एक संगठन के लिए बनाया, एक शिक्षण के लिए बनाया, हरिद्वार का यहाँ का, दोनों को शिक्षण को बनाया और शिक्षण को देने के बाद में फिर क्या किया, फिर हमने दूसरे भी बनाए थे, जगत गुरु शंकराचार्य ने चार तीर्थ बनाए थे। महावीर भगवान समस्त गुरु रामदास ने सारे महाराष्ट्र में 2000 के करीब मंदिर बनाए थे। आज हमारे भी मंदिरों की बहुत बड़ी संख्या बनती हुई चली जा रही है। गायत्री शक्तिपीठों के नाम से 2400 मंदिर बना दिए, अभी और भी बहुत सारे मंदिर बनते जा रहे हैं। इनको कोशिश हमारी यही थी कि इनको गायत्री तीर्थों का रूप दिया जाए और तीर्थों में मंदिर नहीं बल्कि वहाँ इसके शिक्षण संस्था का रूप दिया जाए, वहाँ शिक्षण संस्थाएँ चलें, ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य चलें, रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रयोग चले। ठीक उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ हमारा स्थानीय ये भी है गायत्री तीर्थ। आप ऐसे तीर्थों को मजबूत बनाने के लिए कोशिश कीजिए, तीर्थ यात्रा करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा में आपको समय लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये पूछता हूँ, जब तीर्थ नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? फिर आप कहाँ है तीर्थ, आपको कहीं दिखाई पड़ते हैं क्या? मेरे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, सैरगाह दिखाई पड़ते हैं, पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं जरूर जहाँ तहाँ से जुड़ी हुई है, पर वहाँ कहीं जीवन तो दिखाई भी नहीं पड़ता, कहीं ऐसे ऋषि दिखाई भी नहीं पड़ते, कहीं आरण्य के दिखाई भी नहीं पड़ते, कहीं गुरुकुल दिखाई भी नहीं पड़ते, कहीं लोगों को साधना कराने वाले और साधना का मार्गदर्शन करने वाले और परामर्श देने वाले सत्र और ऐसे आरण्य कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते। इसीलिए आपको एक काम और भी करना है, जहाँ तीर्थ यात्रा करनी है वहाँ तीर्थों की स्थापना करने में भी योगदान देना है, तीर्थ यात्रा तीर्थों की मरी हुई परंपरा को पुनर्जीवित भी करना है। कोई आदमी आए और ये तलाश करें कैसे होते थे तीर्थ, तो आप कहीं दिखा तो सकें कहाँ है तीर्थ, कहीं नहीं है तीर्थ। तीर्थों की जगह पर सब जगह बड़े बड़े विशालकाय मंदिर बड़े हुए पड़े हैं, बड़े बड़े पेट वाले लोग उनके माध्यम से अपना पेट भरते रहते हैं और गुजारा करते रहते हैं। तीर्थों के वातावरण, तीर्थों के गुण, तीर्थों के कर्म, तीर्थों के उद्देश्य, तीर्थों के लक्षण सब ऐसे गायब हो गए, यानी कौन है, बस डुबकी लगाइए, खिलौना देखिए, पैसा चढ़ाइए, डुबकी लगाइए, मंदिर देखिए, पैसा चढ़ाइए, इसके अलावा भी कुछ होता है तीर्थ नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल उपक्रम है। असली बात ये थी अलग होती है, जिसमें ज्ञान गंगा बहती है, या प्रेरणा मिलती है, या दिशा मिलती है, या भावना को उकसा जाता है, आदमी को समुन्नत स्तर का बनाया जाता है, ऐसे तीर्थों की स्थापना की आज निश्चय से जरूरत पड़ गई, तीर्थों का पुनर्जीवन आवश्यक पड़ गया। इसलिए हमने तीर्थों की स्थापना की है। आप इन तीर्थों की स्थापना में योगदान दीजिए, जहाँ बन चुके हैं आप उनको मजबूत बनाने में कोशिश कीजिए, जहाँ बन नहीं चुके हैं वहाँ बनाने के लिए कोशिश कीजिए, जहाँ बन गए हैं और बनाए जाएंगे उनको एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ वो प्रक्रिया जुड़ी रहनी चाहिए जो पूजा से भिन्न है। यहाँ इन सारे के सारे गायत्री तीर्थों में हमने शिक्षण का प्रबंध करने के लिए प्रावधान रखा है, यहाँ बच्चों की पाठशाला, वृद्धों की पाठशाला, प्रणों की पाठशाला, महिला की पाठशाला चलनी चाहिए, यहाँ आसन और प्राणायाम के केंद्र होने चाहिए, यहाँ जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सालय चलने चाहिए, यहाँ रात्रि को कथाएं होनी चाहिए, ये सारे काम होने चाहिए, तब तो हम ये कहेंगे कि ये तीर्थ गायत्री मंदिर कही है, तीर्थ कही है, बात एक ही है, ये बनना चालू हो गए। आप तीर्थ यात्रा को न केवल तीर्थ यात्रा पर निकलें बल्कि नए आदमियों के लिए ये रास्ता भी बनाएं। तीर्थ यात्रा के लिए कोई आदमी जाने वाला हो तीर्थ, तो उसको ये तो मौका मिल जाए तीर्थ कहाँ है, किस जगह जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें, वहाँ जा करके क्या करें, सैरगाहों में क्या करेंगे, सैरगाहों में कितने आदमी आते हैं आपने देखे नहीं, विदेशों में भी जाते हैं, घुमक्कड़ लोग जाते हैं, कोई नैनीताल जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई दार्जिलिंग जाता है, कोई आगरा का किला देखने जाता है, कोई दिल्ली की सैर करने जाता है, कोई बम्बई जाता है। आप भी चले जाइए, कहीं धामों में चले जाइए, दोनों में फ़र्क कुछ फ़र्क नहीं है। इसलिए फ़र्क करने वाले तीर्थ तो बनाने पड़ेंगे, इनको नवजीवन देना पड़ेगा, इसको नए प्राण संचार करने पड़ेंगे। हमने इसमें कदम बढ़ाया है, आप हमारा कंधा मिलाइए, आप हमारे हाथ में हाथ मिलाइए, आप हमारे कदम से कदम मिलाइए। थोड़ा सा प्रयत्न किया है, आप इसमें सहयोग कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। आप मानधाता तो नहीं है, लेकिन इसके बनाने में कुछ तो कर सकते हैं, आप इसके निर्माण में योगदान किसी तरीके से दे सकते हैं। अपने पास कोई धन न हो तो पड़ोसी से धन मांग सकते हैं, पड़ोसी से धन लेकर के भी आप इसमें लगवा सकते हैं। अब तीर्थों की नए युग की न केवल तीर्थ या यात्रा प्रायश्चितों के लिए करनी आपको ज़रूरी है, बल्कि तीर्थों का पुनर्जीवन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों दूसरे लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए ऐसे मौके दें, स्थान बनाएं, यहाँ का वातावरण बनाएं। आपको ये काम बहुत बड़ा करना है, आप मानधाता की तरीके से तीर्थों की स्थापना करने के लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर करें। आप अहिल्याबाई की तरीके से तीर्थों का उद्धार करने के लिए फिर से कुछ कर सकते हैं तो अपने ढंग से करें। उन्होंने अहिल्याबाई ने मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए थे, अब इनके भी जीर्णोद्धार कराने। जीर्णोद्धार तो क्या, मैं तो ये कहता हूँ इन मरों को जिंदा करना है। उनने कम से कम वो तो था जीर्ण, अब यहाँ जीर्ण भी नहीं है, खंडहर भी रहेंगे। खंडहरों की तरीके से थोड़े से नाम निशान पड़े हुए हैं कि यहाँ कभी तीर्थ रहे होंगे। आप तीर्थ जो रह रहे हैं उनको जीवंत करने के लिए कुछ प्रयत्न कीजिए, उसको अपने प्रायश्चित में शुमार कर लीजिए। आप प्रायश्चित में शुमार करने के लिए जहाँ अब तक गायत्री शक्तिपीठें बन गई हैं, उसमें एक काम की बहुत कमी है कि वहाँ ऐसे प्राणवान परिव्राजक नहीं हैं जो वहाँ रहें और सारे वातावरण को हिला दें, सारे वातावरण को जगा दें। बड़ी मुश्किल से कहीं पंडा मिल गया, कहीं पुजारी मिल गया, कहीं आरती करने वाला मिल गया, कहीं नौकर मिल गया, कहीं कर्मचारी मिल गया, कहीं झाड़ू लगाने वाला मिल गया। बस इनसे बेचारे जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ऐसे प्राणवान परिव्राजकों की घोर अभाव है जो वहाँ रहें और अपनी निष्ठा के और अपनी सेवा भावना के आधार पर उस सारे क्षेत्र को जगा दें और सारे क्षेत्र का वातावरण ऐसे बना दें जैसे कि तीर्थों का होना चाहिए। तीर्थों का वातावरण होता है, तीर्थों में जो कोई भी जाता है उस ढांचे में ढलने लगता है, वहाँ एक वातावरण बनता है। वातावरण बनाना नौकरों का काम नहीं है, कर्मचारियों का काम नहीं है, पुजारियों का काम नहीं है, प्राणवानों का काम है। आप प्राणवान मालूम पड़ते हैं यहाँ इस कायाकल्प चिकित्सा में, आप कल्प साधना में आए हुए हैं। प्राणवान न होते तो आप क्यों आ पाते, कष्ट क्यों उठाने के। हर आदमी तो माल मारने के लिए भगवान जी के मंदिरों में फुकट का प्रसाद पाने के लिए घूमता रहता है, क्या कौन करता है, भूखा कौन रहता है, अपना घर का काम कौन छोड़ता है। आपके अंदर वो शराफत मालूम पड़ती है और वो ज़िंदगी मालूम पड़ती है, इससे आध्यात्मिकता का परिचय मालूम पड़ता है। अगर ये बात सही हो तो आपको अगला वाला समय दान देने के लिए एक ही स्थान चुनना चाहिए परिव्राजक के अलावा। घूम घूम के प्रचार करने के अलावा एक तरीका ये भी है कि आप किसी समीपवर्ती शक्तिपीठ में जाकर के बैठ जाएं, कुछ समय तक निवास करें और निवास करने के बाद में अपने जीवन को न केवल प्रसिद्ध करें बल्कि उस क्षेत्र को जगा देने की सेवा साधना में भी संलग्न हो जाएं। ये भी आपका बढ़िया वाला प्रायश्चित्य है, बहुत बढ़िया वाला प्रायश्चित्य है। आप किसी शक्तिपीठ में कुछ समय रहने के लिए आप कार्यक्रम बना करके जाएं तो मैं बराबर ये कहूँगा कि आपने तीर्थ यात्रा का मर्म समझ लिया और उसको करने के लिए तैयारी के लिए कदम बढ़ा लिया। दो काम ये कीजिए और क्या करें, और आप ये कीजिए, तीर्थों का हमको पुनर्जीवन करना है। तीर्थ हमारे सोने पड़ गए, तीर्थों को देश और विदेशों में स्थापना करने के लिए हमारा बड़ा मन है। आप हमारा हाथ बटा दीजिए, हाथ बटा देंगे तो आपके सहयोग से हम इतना बड़ा काम कर सकेंगे, तीर्थों का पुण्य जैसा कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वास्तव में सही हो जाए। वहाँ आकर के आप सच्चे अर्थ में लोग प्रायश्चित कर सकें, ऐसे तीर्थों का बनाना आज की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप इसको दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जो उसमें तीर्थों में दान पुण्य की भी परंपरा है, क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग की भी परंपरा है, ब्राह्मण भोजन की परंपरा है। पहले लोग गंगा जाते थे, तीर्थ यात्रा आते थे, घर लौटने पर जप कराते थे, कथा कराते थे, भागवत कराते थे, ब्रह्म भोजन कराते थे, दान भी करते थे, तीर्थों में भी दान करते थे, घर आके भी दान करते थे। वास्तव में समय दान का दूसरा रूप है अर्थदान। समय दान जो आदमी नहीं कर सकते वो अर्थदान कर सकते हैं। समय दान और अर्थदान दोनों संभव हो सकें तो क्या कहना, लेकिन नहीं है तो अपने समय के बदले में आप दूसरे आदमियों का समय खरीद करके भी ऐसा कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो मत कीजिए, आपके स्थान पर कोई और आदमी काम कर देगा, आप उसके गुजारे का प्रबंध कर दीजिए। गुजारे का प्रबंध आप कर देते हैं तो अपने काम करने की बराबर बात बन गई। अपने यहाँ कात्री परिवार में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो सेवा करने के बड़े इच्छुक हैं, पर क्या कर सकते हैं, घर की गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि इनको कुछ दिए बिना और अपना शरीर का निर्वाह दिए बिना, कपड़ा दिए बिना काम चलता नहीं है। कपड़ा अपने घर से ले आए, खाना अपने घर से ले आए, बच्चों का प्रबंध अपने घर से कराएं, ऐसे आदमी हो तो सकते हैं पर बहुत कम है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको खर्च तो चाहिए, पेट भरने को चाहिए। इस तरीके से जो समाज सेवी लोक सेवियों को मैं कितनी बड़ी संख्या सिर्फ इसलिए रुकी पड़ी है, इनका हम गुजारे का प्रबंध न कर सके, रोटी का प्रबंध न कर सके, कपड़े पहनाने का साधन हमारे पास नहीं है, और जिनको बहुत ज़रूरत पड़ रही है उनके बच्चों के लिए नमक रोटी का इंतजाम करने में हम समर्थ नहीं हो सके। इसलिए हजारों लाखों कार्यकर्ता जो आज समाज का नए उत्थान के लिए निर्माण करने के लिए आवश्यक थे, उन ब्राह्मणों के लिए रोटी आज हमारे पास नहीं है। कटौती करके अपने खर्चे में से कटौती करके कोई दान भी कर सकते हैं, ये प्रायश्चित के तरीके हैं। तीर्थ यात्रा में डुबकी मारना ही नहीं है, जप करना ही नहीं है, पंचामृत पीना ही नहीं है, मंदिरों के दर्शन करना ही नहीं है, पर असली बात भी तो सोचिए, बिल्ली के एक गले में घंटी भी तो मारिए, वास्तविकता के नज़दीक तो आइए, आप कुछ त्याग भी तो कीजिए, सेवा की बात भी तो सोचिए, मन से तो उदार बनिए, कुछ कष्ट भी तो उठाइए, कुछ मेहनत भी तो कीजिए, कुछ त्याग करके भी तो दिखाइए। नहीं साहब, पंचामृत पियेंगे अपना पंचामृत पियेंगे, एकादशी का उपवास करेंगे, गंगा जी में डुबकी मारेंगे, प्रायश्चित करेंगे, किसी देव काट लाइए डाका डालिए ना, प्रायश्चित करेंगे जी, प्रायश्चित ऐसे प्रायश्चित होते हैं। खामियाना चुकाइए, खामियाना चुकाने के लिए तीर्थ सबसे अच्छे माने गए। सर, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने आपको निवेदन किया, आप गाँव गाँव घूम करके पद यात्रा कर सकते हैं। आप अपने घर छोड़ करके कुछ समय तक किसी शक्तिपीठ में, गायत्री प्रज्ञापीठ में आप निवास